ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय दो श्लोक संख्या 49। यह इच्छया इसह सृजति इदम् अव्ययः यह एव रक्षति अवलुम्पते च यह तस्य अवलाः क्रीडनम् आहु इषितुः चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभुः। यह इच्छया इषः सृजति इदम् अव्ययः य एव रक्षति अवलुम्पते च यः तस्यावलाक्रीडनम् आहूयिषितु चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु। इच्छया ईशः सृजति इदम् अव्ययो य एव रक्षति अवलुम्पते च यः तस्य बलाः क्रीडनम् अहो ईषितु चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु। यः इच्छया इषः सृजति इदमव्ययः य एव रक्षति अवलुम्पते च यः तस्य बलाक्रीडनम् आहूयिषितु चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु। य इच्छेष सृजतीदम् अव्ययो जयेव रक्षति अवलुम्पते जयः। तस्याबलाकिडनम् आहुरिषितु शराशरं निग्रह संग्रहे प्रभु यैश्चैषः सृजतीदमव्ययो स एव रक्ष्यते अबलं पते च यः तस्याबलाक्रीडनम् आहुरिषितु चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु यैच्छया इषः सृजतिः इदमव्ययो यैव रक्ष्यते अवलुम्पते च यः तस्याबलः क्रीडनम् आहुरिषितु शराश्चरं निग्रह संग्रहे प्रभु मतय शब्दार्थ यः जो इच्छया उसकी इच्छा से किसी के द्वारा बाध्य होकर नहीं इसह परम नियंता सृजति उत्पन्न करता है इदम इस भौतिक जगत को अव्यय यथारूप में रहकर इतनी सारी भौतिक सृष्टियों को उत्पन्न करने के कारण अपने अस्तित्व को खोए बिना यह जो एव निसंदेह रक्षति पालन करता है अवलुम्पते संहार करता है च भी यह जो तस्य उसका अबलाहा हे दीन स्त्रियों क्रीडनम खेल खेल आहु वे कहते हैं इसी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चर चरम चर तथा चर निग्रह विनाश में संग्रहे या रक्षा में प्रभु पूर्ण समर्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए। उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया हे अबलाओं उस अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन पालन और संहार होता है यह वेदों का निर्णय है। चर तथा अचर से युक्त यह भौतिक सृष्टि उनके खिलौने के समान है परमेश्वर होने के कारण वे इसके इसको विनष्ट करने तथा इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ है। दोहराइए उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया हे अबलाओं उस अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन पालन और संहार होता है यह वेदों का निर्णय है। चर तथा अचर से युक्त यह भौतिक सृष्टि उनके खिलौने के समान है परमेश्वर होने के कारण वे इसको विनष्ट करने तथा इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ है। तात्पर्य, इस प्रसंग में रानियां तर्क कर सकती है कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमारे पति का रक्षा गर्भ में की थी तो अब वे क्यों नहीं कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यच्छेशः सृजति इदम् अव्ययो य एव रक्षति अवलुम्पते चजः। कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्य से तर्क नहीं कर सकता। भगवान सदैव स्वतंत्र है, अतः वे रक्षा कर सकते हैं और संहार भी कर सकते हैं। वे हमारे आदेश वाहक या बहिरा नहीं है। जो उन्हें रुचता है वे वही करते हैं, अतः वे परमेश्वर है। भगवान इस संसार का सृजन किसी के अनुरोध पर नहीं करते, अतः वे अपनी इच्छा मात्र से समस्त वस्तुओं का संहार कर सकते हैं, यह उनकी प्रभुता है। यदि कोई तर्क करता है कि वे इस तरह क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर यही है कि वे ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वे सर्वोपरि है। कोई उनके कार्यकलाप के प्रति आपत्ति नहीं कर सकता। यदि कोई तर्क करता है कि इस पापपूर्ण सृष्टि तथा संसार का क्या प्रयोजन है, तो इसका उत्तर यह है कि वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कोई उनसे पूछ नहीं सकता। यदि उन्हें इसका उत्तर देना होता है वे ऐसा क्यों कहते हैं और ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो उनकी प्रभुता को कम करता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो सप्तम स्कंद भागवत अच्छा मैं मुझे कल रात को कुछ लोग मिलकर बोले थे कि नवकलवर के बारे में बोलने के लिए, भक्त लोग कहें, लेकिन मैं नवकलवर उसके बारे में विशेष प्रस्तुत नहीं हुआ, फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा। लेकिन भागवत के श्लोक भी बहुत अच्छे श्लोक हैं, और श्लोक के बारे में थोड़ा बोल के फिर कुछ मैं बोलने के लिए प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। तो यह जो इच्छया इसह सृजति इदम अव्यय यह एव रक्षति अवलुम्पते च यह तस्य अवला क्रीडनम आहु इशितु चर अचर मृग्रह संग्रहे प्रभु। के उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया, हे अबलाओं, उस अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन पालन और संहार होता है। यह वेदों का निर्णय है। चर तथा अचर से युक्त यह भौतिक सृष्टि उनके खिलौनों के समान है। परमेश्वर होने के कारण वे इसको विनष्ट करने तथा इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं। पिछले श्लोकों में ये वर्णन आया था कि सह रक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, इसलिए प्रभुपाद ने इसी के ऊपर अपने तात्पर्य प्रारंभ करते कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रानियों ये जो वार्तालाप चल रहा है, जमराज जी स्वयं एक बालक की रूप धारण करके ही उस क्षेत्र में पधारे थे जहां पर महाराज सुजज्ञ की पत्नियां सभी शोकाकुल होकर पति विच्छेद में विलाप कर रहे थे, और उन्होंने अपने पति के शव को सत्कार करने में नहीं दे रहे थे। समय बीत गया, अत्यधिक विलंब होने के प्रांत भी जब उनकी ऐसा ही स्थिति देखें कि संसार के प्रति मोहग्रस्त होकर विशेष रूप में उनके पति के शरीर में मोहग्रस्त होकर वो विलाप कर रहे हैं, तो स्वयं जमराज जी पधारे बालक की रूप धारण करके और उन्होंने इनको सांत्वना दे रहे हैं। और विशेष रूप में इस स्कंद में सप्तम स्कंद भागवत में भगवत ज्ञान तथा प्रभुपाद जी कहते कि इस स्कंद में प्रारंभ में कहते कि इसमें भगवत ज्ञान की चर्चा की, संपूर्ण सप्तम स्कंद में भगवत विज्ञान का चर्चा की गई, लेकिन साथ साथ भक्तों की पोषण कैसे भगवान करते हैं उसकी भी चर्चा की गई। दस विषय वस्तु जो भागवत की है उसमें स्वर्ग अथ स्वर्ग विसर्गश्च पोषणम स्थानम उतय मनोन्तरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय, इसमें से पोषण की चर्चा भी इस स्कंद में की गई, भगवान कैसे अपने भक्तों की पोषण करते हैं। तो इसलिए यदि ये स्त्रियां ऐसे ही कह सकते हैं कि रानियां कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमारे पति की रक्षा गर्भ में की थी जैसे पिछले श्लोक में कहा गया, तो अभी क्यों नहीं करते हैं, तो उसी श्लोक की जवाब देते हुए जमराज ने आज की ये श्लोक को कहे कि भगवान संपूर्ण रूप में स्वतंत्र है। जय इच्छया ईश सुजति इदम अव्यय, जिनकी इच्छा से संपूर्ण विश्व की सृष्टि होती है उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता है, और उनको ये प्रश्न भी कोई जिज्ञासा नहीं कर सकता किसी लिए सृष्टि करते हैं, क्योंकि भागवत के पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत में कहता कि जन्मादस्य जतः इतरतस अभिज्ञ स्वराट, भगवान स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई ये प्रश्न नहीं जिज्ञासा कर सकता, वो अपनी इच्छा से ही सृष्टि करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से ही उद्भूत हुआ है और भगवान ही सभी कारण के कारण है। तो लेकिन फिर भी कहते कि इनकी इच्छा से ही ईशा वो ईश्वर है, परम नियंता है, इसलिए उसने सृष्टि करते हैं, इसकी रक्षा भी करते हैं, रक्षति अवलुम्पते है, इसका संहार भी कर देते हैं, इसमें उनकी पूर्ण स्वतंत्रता है। ये संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति और इसकी प्रलय करना है तो इनके खिलौना, एक छोटे बच्चा जैसे खेला खेलता है इसी प्रकार भगवान की एक क्रीडन के सदृश है, क्रीडनम एक खेल जैसे हैं। इसलिए इनको ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता क्यों भगवान ऐसे करते हैं। भगवान कुछ भी कर सकता अपने इच्छा से, जो इच्छा होगा करेंगे, वो इच्छामय है। किसको रक्षा करना चाहते हो रक्षा करेंगे, किसको माने विनाश करना चाहते हो विनाश करेंगे, इसमें इसको कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। भगवान यदि किसको रक्षा करना चाहेगी इसको कोई मार नहीं सकता है। भक्ति ठाकुर अपने शरणागति में बहुत सुंदर भजन लिखे हैं, इसके बारे में कई भजन है। उन्होंने कहते कि तुमी तो मारी बेजारे के तारे राखी ते पारे तब इच्छा बस त्रिभुवन तब इच्छा बस त्रिभुवन तुमी तो मारी तुमी तो राखी बेजारे के तारे मारी ते पारे सकल विधिरा विधि तुमी सकल विधिरा विधि तुमी। कहते कि आप यदि किसको मारना चाहोगे इसको कौन बचा सकता है संसार में, किसी की हिम्मत है कोई नहीं बचा सकता। यदि आप इसको रक्षा करना चाहते हो इसको कौन मार सकता है, क्योंकि आप सभी विधि के नियम बनाने वाले हैं, आप समस्त विधि को बनाते हैं और इसको तोड़ भी सकते हैं। महाभारत में से जयद्रथ की वध की घटना है, इसमें भगवान चाहते थे कि अर्जुन की रक्षा हो और जयद्रथ का विनाश हो, चाहे सारे महायोद्धाएं इसको घेर कर रखे थे, किसको जयद्रथ को, और यह भी था कि सूर्य अर्जुन भी प्रतिज्ञा ले रखा था कि सूर्य अस्त के पहले इसको समाप्त करूंगा, और सब लोग देखे सूर्य भी अस्त हो गया तभी जयद्रथ सोचा कि मैं बच गया है, बाहर निकालकर बहुत मस्ती कर रहा था, लेकिन भगवान ने फिर अपने भक्त को रक्षा करने के लिए किसको अर्जुन को आकाश में प्रकट करा दिया, किसको सूर्य है। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन तब इच्छा मते शिव करे न संहार तब इच्छा मते माया सूर्य कारागार है। इन्हीं की इच्छा से ही सूर्य आलोक प्रदान करते हैं, सूर्य उदय होते अस्त होते हैं, उन्हीं की इच्छा से ही चंद्रमा भी उदय और अस्त होती है, चंद्रमा भी अमावस्या पूर्णिमा आदि तिथि के माध्यम से कार्य करती है। इसलिए रूपा जी कहते कि इनको पूछा नहीं जा सकता, वो इनको कौन जिज्ञासा करेगा, वो स्वतंत्र है सुराट है कुछ भी करने के लिए समर्थ है। इसलिए भगवान यदि किसको रक्षा करेंगे इसको कौन मार सकता है, भगवान जिसको मारेंगे इसको कौन रक्षा कर सकता है। इसलिए जो ईरानियों की ये अधिकार नहीं कि उन्होंने पूछे कि किस लिए भगवान ने हमारा पति को अभी रक्षा नहीं की, जल्दी बचपन में सभी संतान को गर्भ में रक्षा करते हैं फिर अभी क्यों रक्षा नहीं किए। महाराज परीक्षित को भी अपने गर्भ से मां के गर्भ से उत्तरा के गर्भ से भगवान रक्षा किए थे ब्रह्मस्त्र से, लेकिन फिर जो उनको ब्रह्म अभिशाप हो गया तो भगवान क्यों रक्षा नहीं किए फिर है? लेकिन भगवान स्वतंत्र है, इनकी इच्छा से सब कुछ होता है। इसी प्रकार उनकी जो नवकलेवर महोत्सव है वो भी उनकी इच्छा से होता है, साधारणतः मोहित करने के लिए जो नास्तिक व्यक्ति है मायावादी है वो लोग सब कुछ माया है संसार में, वो उनको मोहित करने के लिए सोचते कि भाई जगन्नाथ भी यदि वो परम ब्रह्म स्वयं भगवान है फिर वो शरीर क्यों चेंज करते हैं, ब्रह्म का शरीर क्यों चेंज होता है, ब्रह्म होता है भगवान का हमारे तरफ शरीर और भगवान में कोई अंतर नहीं है, चिन्मय शरीर है सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, तो उनके शरीर तो फिर उनके शरीर क्यों चेंज करते हैं है? जैसे हम हमारा शरीर है और इसमें आत्मा रहता है, शरीर अंदर में आत्मा रहता है और आत्मा शरीर को छोड़ के चले जाता तो फिर हम दूसरे शरीर में जाकर जीवात्मा प्रवेश करता है, तो इसी प्रकार ये नवकलेवर महोत्सव ऐसे ही मनाया जाता है। जगन्नाथ जी क्या करते हैं, एक शरीर को छोड़ देते, पहले के जो विग्रह है दारू विग्रह उसको छोड़कर फिर दूसरे नए दारू विग्रह में प्रवेश करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे हो सकता है? और ब्रह्म भी क्या है जगन्नाथ जी के हृदय में, वो भी लोक नहीं जानते हैं, पता नहीं वो क्या है, उसके बारे में कई लोग कितनी मतामत देते हैं। बुद्धिस्ट लोग कहते कि हे बुद्धदेव, बुद्धदेव के दांत है। जगन्नाथ जी को प्रत्येक संप्रदाय, हमारे सनातन संप्रदाय की जितनी भी गोष्ठी है, धार्मिक अलग अलग गोष्ठी, सभी कहते कि जगन्नाथ ही हमारा इष्ट है, वही परम ब्रह्म है। बुद्धिस्ट लोग भी मानते हैं, किनको? जगन्नाथ को। वो मूर्ति मानते नहीं, मूर्ति पूजा, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी को मानते हैं। कहते कि जगन्नाथ जी के हृदय में जो रहा है, जो ब्रह्म है, उसको परिवर्तन किया जाता है, वो बुद्धदेव का दांत है, है? बुद्धदेव का दांत रखा, वो रखा गया उधर अंदर में। बुद्धिस्ट लोग भी कब्जा करके रखे थे जगन्नाथ मंदिर को कई समय को। कलिंग को जब विजय किए थे अशोक, मगधराज अशोक के अधीनस्थ था, तभी बुद्धिस्ट लोग ने कब्जा करके रखे थे जगन्नाथ मंदिर को, और जगन्नाथ को कहते थे ये कौन है? ये बुद्धदेव है। अवश्य वो लोग ने रथ यात्रा अगर बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो कहते थे ये जगन्नाथ है, ये बुद्धदेव है। तो इसी प्रकार सनातन गोस्वामी जो वैष्णव संप्रदाय, हम जैसे वैष्णव है गौड़ीय वैष्णव देव, वैष्णव है सनातन गोस्वामी, अपने जगन्नाथ स्तंभ में कहते कि गुटी का हृदय, जगन्नाथ के हृदय में जो ब्रह्म रहते हैं, अब सालग्राम है। कौन है? सालग्राम। विशेष कहानी है कि एक बार कोई नेपाल में गंडू की नदी में विशेष सालग्राम गिरा था। वो सालग्राम जीवंत सालग्राम है। सालग्राम को पकड़ते ही स्पंदन होता है, ऐसे स्पंदन हो जो हमारा हार्ट बीट जैसे होता है, ऐसा ही स्पंदन करने वाला सालग्राम। कहते जगन्नाथ जी के हृदय में वो विशेष सालग्राम रखाया गया है। सनातन गोस्वामी कहे कि गुटी का हृदय, अर्थात सालग्राम जिनके हृदय में निवास करते हैं, सालग्राम शिला ब्रह्म के रूप में निवास करते हैं। लेकिन ओडिशा में प्रसिद्ध कहानी भी है कि उड़ीसा में उड़िया महाभारत लिखे हैं सारला दास, बस साधारण उड़ीसा जो मंदिर में जो पंडित लोग रहते हैं, वो कहते कि नहीं ये श्री कृष्ण की नाभि है। क्या है? कृष्ण की नाभि। भगवान श्री कृष्ण अंतिम लड़ा को कैसे समरण किए थे? जरा सबर ने आकर तीर मारा था पैर में, और भगवान ने जैसे वो तीर से मरना हाथों कर पड़े थे, और बाद में उन्होंने बुलाए थे अर्जुन को, बुलाए और उसको तीर को बाहर निकालने के लिए, उसको कथा आप सुने हो। अब पांडव लोग ने आए, इनको चंदन की लकड़ी में भगवान के शरीर को जलाने के लिए प्रयास किया, और जला नहीं जो अंतिम पर, लेकिन वो कहते कि नहीं अंतिम जल जो अंतिम जो भाग रह गया था इनके नाभि की अंश रह गया था, उसी नाभि को ही वही नाभि जगन्नाथ की नाभि में रखे जाते हैं। ऐसा कई प्रकार के मतामत है, लेकिन कोई देखा नहीं वो क्या वस्तु है, कोई अभी तक देखा नहीं वो वस्तु क्या है, किसको देखने का भी अनुमति नहीं है। लेकिन वो बड़े गुह्य रूप से नवकलवर की ब्रह्म की परिवर्तन किया जाता है, उसको कोई पब्लिक देखते नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं उठाना चाहिए, उठाना मना है, भाई इसको कोई पब्लिश करना मना है, लेकिन इस साल फिर भी जैसे पेपर में न्यूज आ गया, फोटो भी आ गया। वो ट्रांसफर जो किया गया अभी थोड़े दिन पहले, चतुर्थी कुछ तिथि में से ही उनको ट्रांसफर किया गया था, ब्रह्म के दोनों पुराने विग्रह को नया विग्रह को सामने सामने करके, पुराने जो विग्रह उनसे जगन्नाथ पर तीनों व्यक्ति तीनों विग्रह में रहते हैं, उनको ट्रांसफर कराते हैं। तो वो विशेष रूप में दैतापतियों की फैमिली परिवार से ही चुना जाता कोई ट्रांसफर करने वाला। तो वो विग्रह जो ट्रांसफर किए हैं, वो तो अंदर से तो क्या दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ब्रह्म जो है सही जो रखा हुआ कपड़े में, जो मैंने पाट वस्त्र में जो इसको लपटा के रखा गया, उसका फोटो आ गया। वो ट्रांसफर कर रहे हैं, वो फोटो आ गया, दोनों विग्रह से बैठे सामने सामने, नया विग्रह ऐसे, नया विग्रह और पुराने विग्रह, और ब्रह्म को ट्रांसफर किया गया पब्लिक, मैंने वही पेपर में आ गया है। गजपति राजा पुरी के बहुत दुखी है उसके लिए, उन्होंने पूरा दिया कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लोग दुर्गति को बुला रहे हैं, जो शास्त्र के विधान है फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी वो, लेकिन अभी तक भी फिर भी कोई देखा नहीं, वो कपड़े का चित्र था, माने वो जो बंडल है जिसके अंदर ब्रह्म रहते, वो तो चित्र आ गया, जगह मूर्तियों विग्रहों की चित्र आ गया, लेकिन वो कपड़े के अंदर में क्या है किसी को पता नहीं है अभी भी। तो ब्रह्म की केवल परिवर्तन किया जाता है, जो परिवर्तन करते हैं तो उनकी भी पहले पहले कोई ऐसे ही आके डिक्लार कर देते क्या है, स्पंदन होता है, ये करता है वहीं, तो इसलिए अभी इनके हाथ से बांधा ही जाता है पाट वस्त्र में, इन पूरे कपड़े को पूरा यहां तक हाथ नहीं बांधा ही जाता, फिर पैर भी बांधा जाता है उनको से, जैसे कुछ क्या है उनको फीलिंग ना हो है इस अंदर में क्या है। तो इस प्रकार जब पुराने विग्रह से नया, पुराने जो जगन्नाथ जी विग्रह है उसमें नया विग्रह में जो ट्रांसफर किया जाता है उसी को कहते कि ब्रह्म का जो परिवर्तन किया जाता है, और वो जो नए विग्रह जो निर्माण की जाती है और नए विग्रह में जो ब्रह्म को फिर स्थापन किया जाता है, इसी जो विधि को कहते नव कलेवर, नव का अर्थात नया, कलेवर का अर्थात शरीर, भगवान की दूसरे शरीर बनाकर जगन्नाथ जी के दूसरे दारू ब्रह्म ये विग्रह है जो परिवर्तन किया जाता है। भौतिक दृष्टि से लोग कहते हैं कि क्योंकि ये लकड़ी के विग्रह है और लकड़ी का विग्रह कितने साल तक लास्टिंग करेगा, उसमें कहीं इधर उधर डैमेज हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसलिए हर 12 साल में व 19 साल में इनके परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे ही पिछले विंश शताब्दी में 1912 में नवकलेवर हुआ था, इसके बाद फिर 1931 में हुआ, फिर 1950 में हुआ, 1969 में हुआ, 1977 में हुआ, पर 1996 में हुआ है, प्रभुपाद जी के सेंटेनियल ईयर में हुआ था, फिर अभी हो रहा 2015 में। कितने साल अंतर आता है 1912 से 1931, वो भी 19 साल के अंतर है, प्राय 19 साल के अंतर सारे देखा जाए केवल एक ही इसमें है, 1969 से हुआ था, फिर बाद में 77 में हुआ, तो यहां पर कितना फर्क आ रहा है, सिर्फ 7-8 साल। तो कभी ऐसे कहा जाता है कि जो 1969 में जो नवकलेवर हुआ था वो जो दारू मिला था उस दारू में पर जो जगन्नाथ जी के जो दारू था वो अंदर में खोखला था, लोग बड़े प्रसन्न, बड़े फंडे लोग बड़े व्यथित हुए, भी कैसे ऐसा हुआ है, ऐसे विग्रह कैसे बनाएंगे, ऐसे निर्माण कैसे होगा। लेकिन कहते कि सारे जब राजा और पंडित लोग सब धारणा देकर बहुत स्तुति करने लगे भगवान की, ऐसा कैसे हुआ, कुछ अनीति हुआ बा कुछ कारण से खाना पीना छूट धारणा दिए, फिर देखते कि वो भर गया अपने आप है, फिर भरा हुआ था। क्योंकि आजकल की जो विधि है आस्ते आस्ते पंडित लोग ने जो प्राचीन विधि को परिवर्तन करते जा रहे हैं, पहले तो विधि है कि जैसे नवकलेवर का जो चार मुख्य जो प्रोसेस है, पहले नवकलेवर के रिच बा ये विधि कहां पर लिखा गया बा किस लिए पालन किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज कोई भी व्यवस्था को शास्त्र के आधार पर करना जरूरी है, है? गीता में भगवान कहते कि जो शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न च सुखं मवाप्नोति न शांति न प्रांगति। तो इसलिए शास्त्र में कहां से बताया गया कि नवकलेवर को ऐसे ही भगवान के शरीर को चयन, कब से हुआ उसके इतिहास किसी को भी पता नहीं, कोई नहीं बोल सकता सटीक रूप से कब से ये नवकलेवर की प्रोसेस शुरुआत हुआ, लेकिन है कहां पर ही है विधि। कहते कि ये प्रकृति में जगन्नाथ मंदिर की जो पूजा अर्चन की विधि है व जो कुछ उत्सव मनाया जाता है ये कुछ दूसरे किसी शास्त्र को फॉलो नहीं करते हैं, नारद पंचरात्र को भी फॉलो नहीं करते हैं। नारद पंचरात्र को जगन्नाथ मंदिर में चलाने के लिए रामानुजाचार्य प्रयास किया था, जगन्नाथ जी ने उठा के इनको फेंक दिया है, जगन्नाथ उठा के इनको पूरी से फेंक दिया कहां कुरुक्षेत्र में, बोले यहां नहीं चलेगा। तो कहते कि ये कैसे फिर चलता विधि सब, कहते जब ही महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी को ब्रह्मा जी को माध्यम बनाकर उन प्रतिष्ठित किए रत्न वेदी पर है, स्नान यात्रा वो जगन्नाथ जी की आविर्भाव तिथि है, लेकिन ये आविर्भाव उसी दिन जगन्नाथ जी ने ये मुख्य मंदिर में इनको आविर्भाव वहां प्रतिष्ठित नहीं किया गया था, जो मंदिर में अभी जगन्नाथ जी की जो मुख्य मंदिर है वो उनके जगन्नाथ जी ने कहे कि महाराज इंद्रद्युम्न को देखो महाराज इंद्रद्युम्न आपने जिस स्थान पर 1000 अश्वमेध यज्ञ का संपन्न किया था और उस स्थान मुझे बड़े अति प्रिय है, और वहीं पर जगन्नाथ जी की जो दारू को उन्होंने प्राप्त किया था समुद्र की चक्र तीर्थ से फिर उनको लाकर वहां निर्माण कराया था, उसी वो इधर निर्माण नहीं हुए थे, कहां निर्माण हुए थे गुंडीचा मंदिर जिसको कहते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी ने महाराज इंद्रद्युम्न को कहते कि वो मेरा जन्म स्थान है इसलिए मुझे अति प्रिय है, कौन सा और महाराज इंद्रदेव ने जब वहीं छोड़कर जगन्नाथ जी को चले गए मंदिर के मैंने उनको लाकर प्रतिष्ठित करने के लिए ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, तब उसके बीच में स्वयं मनंतर में गए थे और सुरुचि सा मनंतर आकर हो गया, बीच में एक मनंतर चला गया, बहुत कई चतुर्युग बीत गए। लेकिन इतने दीर्घ समय जगन्नाथ जी ने वही रहते थे कहां गुंडीचा मंदिर में। लेकिन उसमें इनके कैसे होता था, यह तो मंदिर तो बालू के अंदर डूब गया था जो ओरिजिनल मंदिर, लेकिन फिर भी वहां से देवता लोग ने और सप्तऋषियों ने महर्षि लोग ने आकर जगन्नाथ जी की पूजा सेवा करके उनकी उनकी सेवा चलाते थे। इसलिए जगन्नाथ जी ने महाराज इंद्रदेव को कहे कि देखो वो मेरा जन्मस्थान होने के कारण गुंडीचा से जो गुंडीचा मंदिर है जहां तुमने 1000 अश्वमेध यज्ञ मेरे प्रीत्यर्थ में संपन्न किया था, जहां पर मेरी मूल विग्रह प्रकट हुए थे वो है ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि, उस दिन मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्म स्थान होने के कारण मेरी बहुत आसक्ति है उस स्थान पर, और मैं कई दिन तक तुम जो मेरी मंदिर निर्माण करने के लिए चले गए ब्रह्मलोक में मैं वहीं निवास करते रहा, इसलिए मुझे उस स्थान में ममता है, इसलिए प्रत्येक साल मुझे वहां लेके जाना, कितना दिन 7 दिन, वही मेरा जन्म स्थान और मेरी प्रिय स्थान है, वहां पर मुझे लेके जाना। और बसा वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि में उन्होंने ब्रह्मा जी ने स्थापना माने भगवान को अधिष्ठित किया था, जो मुख्य मंदिर है जगन्नाथ जी की जो मुख्य मंदिर वहां रत्न वेदी पर उनको अधिष्ठित किए थे, इसलिए उस दिन भी बड़े महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सब भगवान ने जगन्नाथ जी की जो पूजा विधि आदि 4 पुस्तक मुख्य रूप में जगन्नाथ मंदिर में वो लोग मानते हैं। जगन्नाथ जी की पूजा अर्चन विधि ये सब ब्रह्मजामण में बताया गया, ब्रह्मजामण ये ब्रह्मा जी ने बताए थे महाराज इंद्रदेव ने को, भगवान से डायरेक्ट श्रवण करके डायरेक्ट ट्रांसफर कराए थे, किसको बताए थे, ब्रह्मा जी ने जो भगवान जगन्नाथ जी से सुने उसी को उन्होंने महाराज इंद्रदेव को कहे थे। तो इसलिए ब्रह्मजामण में जगन्नाथ जी की पूजा विधि अर्चना से बताया गया, रुद्रजामण में बलराम जी की पूजा विधि अर्चना की डिटेल, और देवी जामण में व शक्ति जामण में विशेष रूप में सुभद्रा जी के पूजा विधि अर्चन बारे में बताया गया। इसके अलावा और एक पुस्तक है जिसको कहते हैं नीलाद्री महोदय, नीलाद्री महोदय पुस्तक में विशेष रूप में जगन्नाथ जी की भिन्न 12 महीने में जो भिन्न भिन्न उत्सव होता है सब उत्सव की टिप्पणी, कैसे उत्सव मनाया जाना चाहिए, कौन सा उत्सव उत्सव पालन होना चाहिए, सब डिटेल दी गई। और उसी ग्रंथ में भी ये परिचय आता है, संक्षिप्त परिचय दी गई नवकलेवर के बारे में, नवकलेवर क्या विधि के बारे में उसी पुस्तक में नीलाद्री महोदय में दिखाई जाता है। वहां कहा गया कि यहां तक भी करोड़ों साल तक आने वाले जो जितने भी सालों आता रहता है, कौन सा साल में नवकलेवर होने वाले हैं, और वृक्ष जो किस दिग से किस दिशा से प्राप्त होंगे उसका भी सूचना दी गई, संक्षिप्त सूचना वैसी दिशा में, लेकिन उसको पब्लिक में डिक्लार करने के लिए मना है। यदि मंदिर के मुख्य पुजारी जानते हैं लेकिन वो इसको पब्लिक में डिक्लार नहीं करते, इसको जानते ऐसे हैं। नीलाद्री महोदय में नवकलेवर के बारे में विशेष सूचना दी गई, कैसे नवकलेवर होना चाहिए। और लेकिन कभी कभी हम अपने ठीक है नवकलेवर के बारे में उसी से विशेष सूचना प्राप्त होता है, जिस महीने में जिस साल में 2 आषाढ़ के महीना आएंगे एक साथ में, अर्थात आषाढ़ महीना जैसे हमारा कैलेंडर, हम जो इंगो विश्व इंग्रेज कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करके हमारा अभ्यास हो गया, लेकिन प्राचीन काल में हमारा कैलेंडर अलग प्रकार होता है, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ महीना, आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष इस महीना के आते हैं, तो जिस साल में 2 आषाढ़ के महीना आते हैं, अर्थात 2 आषाढ़ कैसे होंगे, जिस महीना आषाढ़ महीने के साथ पुरुषोत्तम मास आता है, जिसे इस साल में है अधिक मास जिस साल में आते हैं, इसको पहले तो मड़ मास कहते थे लेकिन अभी आस्ते आस्ते भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम मास बन गए। लेकिन पुरुषोत्तम मास की महिमा भी मैंने कोई हम देखे हैं, मैंने खुद इसको ट्रांसलेशन किया था पुरुषोत्तम मास की, क्योंकि अवींद्र प्रभु और महानिधि महाराज ने कहीं से किताबें खिलाकर हिंदी किताब मुझे दी ट्रांसलेशन करने के लिए, लेकिन उस किताब के पीछे लिखा गया था पद्म पुराण से आया है, लेकिन मैं पद्म पुराण पूरा ढूंढ के देखा पद्म पुराण में कहीं नहीं है, स्कंद पुराण में थोड़े से सूचना दी गई है, और इसकी कोई विवरण नहीं, प्रभुपाद जी ने कहीं भी पुरुषोत्तम मास के बारे में कुछ नहीं कहा। चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भी कभी सूचना नहीं दी गई कि पुरुषोत्तम व्रत पालन किए, और चतुर्मासी करते थे, लेकिन जो पुरुषोत्तम पालन के है। लेकिन फिर ज्योतिष शास्त्र में आज मुझे सारंगी माता जी दिखा रही थी कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया, तो जो भी है, लेकिन ऐसे पुरुषोत्तम मास व अधिक मास यदि एक साथ में आते हैं, कौन सा किस महीना में, आषाढ़ महीने के साथ पुरुषोत्तम मास आ जाता है, फिर दो आषाढ़ हो जाते हैं, तो उसी महीने में क्या होता है, नवकलेवर भगवान की नवकलेवर की जो विधि दी गई है निलाद्री महोदय में, तो उसी का पालन किया जाता है। कई कालों से चल रहा है नवकलेवर। जगन्नाथ जी बड़े दयालु है, यहां तक उन्होंने औरंगजेब को भी दया किया। किसको? औरंगजेब के शासनकाल में 12 साल वो रथ यात्रा बंद कर दिया था, जगन्नाथ की रथ यात्रा कर नहीं दे रहा था। तो एक व्यक्ति थे रथ थे रामदयित गोस्वामी, वो दीनदयित गोस्वामी ऐसे कुछ था उनके नाम, पुरी में रहते थे। उन्होंने नृसिंहदेव के महान भक्त थे, नृसिंहदेव की ध्यान करते हुए बड़े साहस से आया औरंगजेब को मिलने के लिए और रथ यात्रा के लिए परमिशन लेने के लिए। सभी बोलते थे अरे वो तुम जाता है सिर काट के वहां चढ़ा देगा सूढ़ी में तेरे को, औरंगजेब के पास में जा रहा तू, वो सिख लोगों की नवम गुरु आया था तेग बहादुर, उसको सूढ़ी में चढ़ा दिया। लेकिन ये त्यब जो भी रामदयित गोस्वामी बड़े साहस में आए नृसिंहदेव के मंत्र जपते जपते बड़े, लेकिन जिस दिन उन्होंने दिल्ली में पधार रहे थे चल चल के आए पुरी से, और उस दिन पहला दिन पूर्व रात्रि में औरंगजेब अद्भुत स्वप्न देख रहा था, जगन्नाथ जी ने आए उसके सामने, क्योंकि मैं तेरा अल्लाह बोल रहा हूं, काल मेरी भक्त आएगा इधर, तुम मेरा रथ यात्रा बंद करा दिया, इसको आएगा जो बोलेगा लेटर में अनुमति साइन कर देना, नहीं तो तुझे मैं संपूर्ण रूप में ध्वंस कर दूंगा, है तो बड़ा भयभीत हो गया वो। दूसरे दिन में सब तो डरते थे वो जब, लेकिन दीनदयित गोस्वामी जब आकर पहुंच गए सामने रामदयित गोस्वामी, तो उन्होंने हाथ जो कहे कि मैं औरंगजेब को मिलना चाहते थे, पहले से औरंगजेब बोल रखा था कि छोड़ देना, आते ही तुरंत मेरे पास छोड़ देना, वो गए अंदर में। औरंगजेब बिना पूछे उनके पास जो लेटर लेके आए थे सीधे साइन कर दिया, और साथ साथ कई गांव लगभग मैंने 7 गांव है, और ऐसे विशाल जमीन उन्होंने दान दिया जगन्नाथ जी की सेवा पूजा के लिए। औरंगजेब को भी किसी हिंदू के मंदिर की सेवा के लिए जमीन साइन कर, उसका बोर्ड आप तो के खोरधा स्टेशन में लगा हुआ है, वो यदि देखोगे तो उस एरिया पूरा वो जगन्नाथ जी की प्रॉपर्टी था, जगन्नाथ जी को औरंगजेब ने दान कर दिया था। इसलिए जगन्नाथ जी बड़े दयालु है, किसको भी कृपा करते हैं जिसको। तो इसी प्रकार मैं क्या कह रहा था, इसमें कैसे आ गया, जगन्नाथ जी के नवकलेवर का जो इतिहास है, तो ये ग्रंथ में दिखाई जो निलाद्री महोदय में है चले आ रहा। कभी कभी तो हम देखते हैं कि इसमें बाधा भी आ जाती है, कभी कभी जगन्नाथ जी को उठाकर, एक व्यक्ति था कड़ा पहाड़ नाम से प्रसिद्ध है उड़ीसा में, पहले ब्राह्मण परिवार में था वो व्यक्ति, लेकिन वो बाद में मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया था, तो उसको सारे ब्राह्मण त्याग दिए, सब हिंदू समाज त्याग दिया, और वो लेकिन वो अपने माफी मांगकर फिर हिंदू समाज में आने के लिए कितना प्रयास किया, जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने पढ़कर रो रहा था, कई सालों तक रोया। ब्राह्मण लोगों ने इसको, पंडे लोगों ने इसको पत्थर फेंकते थे, इसको थूकते थे, बहुत कुछ उसको, लेकिन वो सब सहन कर ही पड़ा था। ऐसे कई साल तक पड़ा रहा, 12 साल तक जो कोई कुछ नहीं सुना, तो उसको मन में बड़ा क्रोध आया, क्योंकि ये भगवान है, मैं इतने प्रार्थना करता हूं मेरी प्रार्थना नहीं सुनता ये, यदि भगवान होता मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मेरे प्रति कौन सा इतना बड़ा, यदि ये जगत की नाथ है, सारे जगत की ब्रह्मांड की नाथ है, फिर ऐसा कैसा होता है। प्रतिज्ञा लिया, मैं इस लकड़ी के ढेरे को उठाकर लेकर जला के फेंक दूंगा, और जाकर मुस्लिम आर्मी में ज्वाइन कर लिया है, कलकत्ता के नवाब की जर्मन आइन में, तो और वहां से सेना आस्ते आस्ते सेनापति बन के पूरी बड़े आर्मी लेकर आक्रमण किया उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर से उठा के ले गया, उड़ीसा इस इतिहास में है, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा को उठा के लेके चला गया, सीधा लेकर हावड़ा पहुंच गया, कलकत्ता में लाकर हुगली नदी के किनारे, वहां पूरा मैंने पूरे बड़ा आग लगाकर जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के विग्रह को जला ही दिया था। और वहां पर एक व्यक्ति रहता था खोरधा के, बिसर महांती उसके नाम था, महान भक्त था जगन्नाथ जी को, वो फॉलो कर रहा था, इनको पता नहीं था वो मुस्लिम आर्मी को, ये अंदर में जाकर वहां पहुंचा था। जब इन्होंने विग्रहों को जला रहे थे, वो पागल की तरफ उसी के अंदर जब जल रहा था, देख रहे थे बहुत फोर्स है सब लोग को, क्या कर रहे, जब जल रहा था सब चले गए आस्ते आस्ते, दो चार लोग थे और सिपाही थे, तो उन्होंने हठात आग के अंदर प्रवेश कर गया। लोग जानबूझकर सुइसाइड कर दिया लगता है, हिंदू है सुइसाइड कर दिया लगता है जगन्नाथ, लेकिन वो उसके अंदर में प्रवेश करके ही ये ब्रह्म को लेकर आया। किसको? जगन्नाथ जी की हृदय में जो ब्रह्म है इसको लेकर आ गया। और जगन्नाथ जी की कृपा से कुछ नहीं हुआ, आग का अंदर प्रवेश किया फिर बाहर निकल आया, उसके शरीर में कहीं भी आग नहीं लगा। उन्होंने लेकर फिर लाकर खोरदा में रखकर अपने घर में पूजा करता था उस ब्रह्म को लाकर, नाभि ब्रह्म को लाकर। लेकिन जब रामचंद्र देव पुरी के गजपति राजा बने तो बड़े दुखी हुए, जगन्नाथ जी को न देखकर मंदिर में बहुत रोए, अनशन करने लगे खाने पीने छोड़ के। तो जगन्नाथ जी उनको सपने में आया है, द्वितीय रामचंद्र देव, इनको कहते कि इंद्रद्युम्न की दूसरे अवतार है, कि इन्होंने के भगवान ने इनको जगन्नाथ ने कही कि तुम इतने क्यों दुखी होते हैं, वो तो मेरे शरीर को ऐसे मैंने जो जोड़ा दिया, लेकिन मैं अभी तक हूं, मैं ये विश्व महंत के घर में मेरी पूजन हो रहा, तुम वहां से लाकर फेरी में मुझे नवकलेवर उत्सव मनाओ, अभी आने वाला है नवकलेवर मेरा, और इसलिए तुम ब्रह्म को लाकर उनमें स्थापना करो। इसलिए रामचंद्र देव ने जाकर फिर विश्व महंत के पास पहुंचे खोरदा में, जैसे भगवान ने स्वप्न में कह दिया था, तो उससे देखे कि सच को सच नाभि ब्रह्म हुआ पूजा हो रहे हैं, तो उनको लाकर फिर दोबारा उन्होंने स्थापना कराया था, जगन्नाथ जी के शरीर में फिर नाभि ब्रह्म को स्थापना कराए थे। तो इस प्रकार ये इतिहास की जगन्नाथ जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो भी भक्त था बेचारा कड़ा पहाड़ जो, तो उसके ये लोग अत्याचार किए, ब्राह्मण लोग ने बहुत कुछ पत्थर फेंके ये किए, तो उसका भगवान सबके होते हैं, वो केवल एक ही नहीं कि केवल हिंदुओं के होते हैं, मुसलमान के नहीं है, जगन्नाथ सबके हैं, जगत के नाथ है। जगन्नाथ जी के इतिहास से पता चलता कि यहां पर जेसस कास्ट भी पधारे थे, मोहम्मद भी पधारे थे, जगन्नाथ संस्कृति कोई ये संकुचित संस्कृति नहीं, जैसे पुरी पंडित सोचते कि ये पुरी के नाथ है, ये पुरी के नाथ नहीं है, संपूर्ण जगत के नाथ है। प्रभुपाद जी ने इसको प्रमाणित किया पूरे विश्व में, इनको लेकर है। हमारे उड़ीसा में एक छतिया मठ होता है, हमारे वहां पर एक बाबा था हरिदास मालिका, वो मालिका लिखा कि ये जगन्नाथ मंदिर में राशियन लोग आएंगे, जगन्नाथ जी को उठा के ले जाएंगे राशिया है, इसलिए डरते हैं पंडे लोग वो विश्वास करते हमारे क्या, इसलिए उनको बड़ा विश्व डर आता है, जब विदेशी लोग को प्रभुपाद जी ने लेकर आए हैं तो बोले कि ये तो जगन्नाथ को उठा के ले ही जाएंगे, इसलिए डरते छोड़ते नहीं अंदर, बोले नहीं ये सफेद वाले कुछ भी राशियन, और विशेष रूप में लिखा गया राशिया की भक्त आएंगे जगन्नाथ जी को उठा के ले जाएंगे है। लेकिन वो तो ऐसा समझ नहीं पाते कि जगन्नाथ सर्वत्र है, और रशिया में चले ही गए, वहां भी रथ यात्रा मनाई जा रहा है लेकिन तो इस प्रकार नवकलेवर जो है प्रत्येक लगभग जो दो आषाढ़ महीना आता है किसी साल में, और कभी ये 12 साल में आता है, कभी 8 साल में आता है, कभी 19 साल में आता है, कभी 24 साल में भी आते हैं, लेकिन जिस साल में दो आषाढ़ के महीने आएंगे पुरुषोत्तम मास के साथ, आषाढ़ महीने के साथ पुरुषोत्तम मास आएगा, भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को भी पुरुषोत्तम कहते हैं और पुरुषोत्तम क्षेत्र वो भी है, है? तो इसलिए उसी साल ये नवकलेवर की विधि चलता है कि जब सबसे ये रिचुअल से मैं इसको विस्तार से कहूंगा तो फिर ये क्लास हो जाएगा। तो नवकलेवर जो होता था पुराने विग्रह तो है, लेकिन नए विग्रह कैसे होंगे, नया दारू फिर ढूंढने पड़ता है, नया वृक्ष कहां से किस प्रकार वृक्ष से भगवान की विग्रह बनेगा उस वृक्ष ढूंढते हैं, और चार दारू के ढूंढ की जाती है, कौन सा सुदर्शन पहले दारू माने सीरियली इसके अनुसरण की जाती है, पहले सुदर्शन दारू की खोज करते हैं, बलदेव फिर सुभद्रा फिर लास्ट में जगन्नाथ। लेकिन ये जो ढूंढने के लिए जाते हैं इसके लिए एक प्रोसेशन जो निकलता है उसमें कई लोग रहते हैं, उसमें जो कई लोग रहते हैं इसमें से एक पति महापात्र रहते हैं, पति जो पूरा पार्टी का लीडिंग करता है, पति महापात्र वो विद्यापति, और विद्यापति के जो ब्राह्मण पत्नी की गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुआ, तो ऐसे कोई एक पति महापात्र उसमें रहते हैं, जो कि एक लंका ए नौ महाराणा, जो महाराणा माने विश्वकर्मा के जो पहले जो जगन्नाथ जी के विग्रह निर्माण किए थे उनके वंशज, फिर 20 दैतापति, दैतापति माने जो विश्वावसु सबर की कन्या ललिता और विद्यापति की संयोग से जो संतान उत्पन्न हुए थे उनके वंशज 20 दैतापति जाते हैं, 16 ब्राह्मण जाते हैं, जो जगन्नाथ जी के सेवक वो उसमें से 16 लोग जाते चारों अल्टर से, जो चुने चुने ब्राह्मण को भेजा जाता है, जगन्नाथ जी बलराम सुभद्रा सुदर्शन सभी की पूजा, 16 लोगों को भेजा जाता है। और जो देवलोक निर्माण किए थे जगन्नाथ जी के देवल करणास वो लोग भी उसमें से भी 3 लोग जाते हैं। इसी प्रकार पहले जो रीति भी था कि उनके साथ में सिपाही लोग 30 लोग जाते थे, इस नवकलवर में भी 30 पुलिस ऑफिसर उसमें थे, 2 इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भी थे। इसी प्रकार ये सब पूरे ग्रुप निकालते हैं किसको, वृक्ष को ढूंढने में है? लेकिन ये वृक्ष को कब से ढूंढना प्रारंभ करते हैं, प्राय मुझे ठीक से ध्यान नहीं, अक्षय तृतीया की बात कब से, अक्षय तृतीया की बात होने से शुभारंभ करते हैं है? पहले आज्ञा माल लेते हैं जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी के सामने जाकर, पार्टी पूरे सब 150 लोग जाकर वहां प्रणाम करते हैं और जगन्नाथ जी की आज्ञा माला, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की आज्ञा माला उनको दिया जाता है। जो जो दारू को ढूंढने के लिए जो ग्रुप रहते हैं तो उनको आज्ञा माला जगन्नाथ जी के लेकर फिर वो आते हैं। एक दिन रात मैंने वो तो रहते हैं उधर पुरी में ही, वो जगन्नाथ बल्लभ गार्डन वहां जाकर वहां निवास रात्रि में निवास करते हैं एक दो दिन। फिर उससे जाते काकटपुर मंगला है जो 50 किलोमीटर लगभग 50 किलोमीटर दूर से पुरी से कोणार्क के मार्ग पर आता है, तो काकटपुर में जाकर मंगला के पास धारणा देते हैं। लेकिन ये सारे विधि पदल में चलकर जाने के विधि है, लेकिन इस साल सब क्या किए, सबके पास अभी इनोवा है और दूसरे सब गाड़ी में उठ के चले गए हैं, सब गाड़ी में चढ़ के स्कूटर में चढ़े जो जैसे सब, और वो विधि को टाल दिए। कौन सा, पदल में चलने का जो विधि है, पदल में चल के जाना। इसलिए वहां पर मंगला जी के पास में जाकर फिर खा, मैंने वहां पर वही धारणा देकर रहना चाहिए इनको, हविसार न खाकर फास्टिंग रहकर जो वहां रहना चाहिए। इस साल वो लोग जाकर सब पार्ट में पास में जो गेस्ट हाउस था गेस्ट हाउस में रह गए और गेस्ट हाउस में रहे और बहुत अच्छे अच्छे खाना भी खाए। इसलिए देवी ने बहुत क्रोधित होकर इस साल जो विश्राम होता तो बताया कि ऐसा करोगे तो मैं कभी भी और आदेश नहीं दूंगा, वृक्ष कहां मिलेंगे मैं को सूचना तुमको कभी नहीं दूंगा भविष्य में। इसलिए पुरी के राजा भी बड़े दुखी थे, ये क्या कर रहे हैं, सारे विधि को टाल रहे हैं माया के प्रभाव से आकर, कलयुग के प्रभाव से। इन जाते हैं जाकर वहां पर मंगला काकटपुर मंगला के पास में इनको धारणा देना पड़ता है। फिर देवी बताते हैं वृक्ष कहां मिलेगा स्वप्नादेश से, व किसी व्यक्ति के ऊपर विश्राम आ जाते हैं पूरे आवेश हो जाते, तो फिर वो बताता कि वृक्ष कहां मिलेंगे किधर किधर मिलेंगे। वो पंडित को जो जो धारणा दिए उनको भी स्वप्न में बोलते कि ये विग्रह जगन्नाथ की दारू इस दिशा में मिलेंगे, इस एरिया में मिलेंगे, कुछ अंचल के नाम भी कह देते और बलराम की दारू यहां मिलेंगे सुभद्रा। ये सब देवी के आदेश से, जोगमाया देवी मंगला देवी के आदेश से फिर ये ढूंढने जाते हैं, उन्होंने दिशा में जाते हैं। पहले जाते हैं ढूंढने के लिए किसको, सुदर्शन की दारू। इसके पिछले भी जो दमकलवर हुआ था उसमें भी देवी बड़े क्रोधित थे, कुछ नियम को तोड़ते रहते थे, इसलिए वो आदेश ही नहीं दिए, कुछ नहीं बोले कहां पर वृक्ष मिलेगा। ये 7 दिन धारणा दिए, कुछ नहीं आदेश हुआ। बड़े दुखी होकर फिर सभी लोग रोने लगे, पूरा रोने लगे, रो कर बहुत प्रार्थना किए, राजा स्वयं गए प्रार्थना किए। तो फिर उन्होंने फिर कोई गांव के लोग आकर कहा कि देखो हमारे गांव के पास में एक वृक्ष है, अब आके देख सकते हैं वो कैसे बहुत हमको तो दिव्य वृक्ष लगता है, वो उसमें से सुगंध आ रहा है। इसलिए सब फिर गए, कुछ लोग पंडित लोग जाकर वहां पहुंचे और वहां पर जब पहुंच के देखे कि ये सुदर्शन जी की दारू था, माने सुदर्शन के वृक्ष में जो लक्षण है, सुदर्शन मन चक्र का चिन्ह और सीधे वृक्ष सीधा बढ़ते हैं, अंत में केवल 4 ऐसे ही शाखा होते, तो जो कुछ लक्षण है उसको देखकर। लेकिन वो वृक्ष तो मिला, लेकिन जो वापस आ रहे थे बीच में नदी में बाढ़ आ गया था, लोगों को जब पता लगा कि वहां ये जगन्नाथ जी के माने दारू विग्रह यहां पर है, और कई सालों से लोग सोचते गवर्नमेंट को कहते थे कि नाली के ऊपर पुल बना दो, बनाते नहीं थे। इसलिए वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स मिल गए, बल्कि इसको ये अभी ये सुजग है इसको अभी तोड़ दो, जो टेम्पररी पुल था इसको तोड़ के फिर बहा दिए, अभी जगन्नाथ की दारू को कैसे ट्रांसफर करेंगे, बड़ा समस्या हो गया था। वो सारा डिटेल में नहीं कर, लेकिन इस प्रकार पिछले विग्रह मैंने जो दारू को ऐसे ही वो लोग ने फिर दूसरों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ था, देवी आदेश नहीं दिए थे। अरे इस में भी देवी ने भी सतर्क करा दिया, तुमको बार बार कहते नीति विधि को तोड़ोगे तो कैसे चलेगा, है विधि पालन करना चाहिए। तो इसी प्रकार जब दारू के निर्णय की जाती है, दारू में जो मुख्य मुख्य जो लक्षण होते हैं, मैं अभी सारा बोलने संभव नहीं है, मुख्य जो लक्षण कहते चक्र चिन्ह रहता है, शंख चक्र के चिन्ह विशेष रूप में किन की दारू में, जगन्नाथ जी की दारू में, हड़ मुसल के चिन्ह बलराम की दारू में, ज्वलि चिन्ह और शक्ति चिन्ह विशेष रूप में, पद्म चिन्ह सुभद्रा जी की दारू में, और सुदर्शन चक्र में चक्र चिन्ह रहता है, और इसको वृक्ष को गार्डिंग करने के लिए कौन रहता है, सर्प रहना जरूरी है। आप लोग सब देखे होंगे इंटरनेट में साफ साफ कैसे है, सर्प रहत को जगती रहता है, चाहे वृक्ष के नीचे रहो गर्त करके, या वृक्ष के बाजू में कोई दूसरे दूसरे हुंका वाल्मीकि हुंका में रहो, कैसे भी हो सर्प सर्प उधर गाड़ करके रहता है। सर्प किस लिए वृक्ष को गाड़ करता है, क्योंकि जिस वृक्ष में पक्षी घोसला दिया होगा वो वृक्ष में जगन्नाथ जी के विग्रह नहीं बनते हैं, तो इसलिए उसको गार करने के लिए कि उसका एक ड्यूटी है कि वृक्ष में किसी पक्षी को बैठने नहीं देता है, उसमें उसको घोसला बनाने नहीं देगा, इसलिए सर्प स्वयं अनंत शेष के जो अवतार है वो उसको घूमते रहते हैं, उसको गार्डिंग करके रहते हैं। इसलिए पॉइजनस स्नेक होना चाहिए, उसके पास में एक इमली का पेड़ होना जरूरी है, इमली पेड़ टर्मरिन ट्री, और श्मशान होना चाहिए पास में, नदी बहता हुआ है, कोई नदी बहता हुआ बा कोई बड़ा तालाब जलाशय होना चाहिए, और उस वृक्ष में कई अलग अलग कहा कि चार ब्रांच हो बा उसकी मेन ब्रांच तो ऐसे कम से कम 10-12 फीट तक स्ट्रेट जाना चाहिए, उसके ऊपर फिर अलग अलग ब्रांच, बलराम जी की जो ब्रांच अपने विग्रह बनता है वो कम से कम 7x इससे भी अधिक ब्रांच होना चाहिए उस वृक्ष में अलग अलग ऐसे, क्योंकि अनंत सही से है उनके कई फणे होते हैं, तो उसको वृक्ष कैसे अलग अलग होना चाहिए। और तो इसी प्रकार कम से कम 4 से 7 अलग अलग ब्रांच उसमें होना चाहिए, और इसी प्रकार कई लक्षण उसमें बताया गया। उसके अलावा उसके सहाड़ा वृक्ष, सहाड़ा वृक्ष आपको समझ नहीं है, समझ सहाड़ा वृक्ष उड़िया में जानते हैं, सहाड़ा वृक्ष होता, वरुण वृक्ष होता, बेल के वृक्ष होते हैं, ऐसे कई ऑस्पिशियस लक्षण को दिखाया जाता है, सब देखकर फिर चुनते हैं उस वृक्ष को। यदि वो नीम का पेड़ है लेकिन फिर भी उसके वृक्ष में उसमें से सुगंध आता है, कैसे चंदन की तरफ आप महाप्रसाद कही की जाकर कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद जैसे उसी का सुगंध आता उधर है। तो इसी प्रकार कई लक्षण को देखकर वो दारू के निर्णय करते हैं, और दारू निर्णय करने के बाद फिर इसकी उसको वहां से लेकर आना मंदिर तक, वो दूसरे कोई वाहन में ऐसे ऐसे लगकर नहीं लाया जाता, उसी जो वृक्ष से जो मुख्य ब्रांच से, जो मुख्य ब्रांच से तो भगवान के विग्रह बनेंगे लेकिन ऊपर के जो ब्रांच है अन्य डाल को काटकर उसी से क्या बनाते हैं, इसके चका बनाते हैं, उसी की उसी दारू वही जो वृक्ष के ही टहनी उसी में से ही सकड़ बनाते हैं, सकड़ बनाकर उसी के ऊपर रखकर फिर उसको खींचकर उसको लेके आते हैं, किसी जानवाहन से बा किसी पशुओं के द्वारा बा अन्य किसी के द्वारा नहीं, जैसे रथ को हम खींच के लेते हैं मनुष्य इसी प्रकार उन्हें खींचकर लेके आते हैं, पदल में चलते चलते एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ग्रामवासी लोग ने उनको साक्षात जगन्नाथ बलराम सुभद्रा से सुदर्शन से अभिन्न मानते हुए वृक्षों को बड़े उत्साह के साथ खींचते खींचते पुरी तक पहुंचाते हैं। पहले तो उनको दारू का माने वहां पर यज्ञ किया जाता है, यज्ञ करके ही यज्ञ पहले सांप निकाल के चले जाता है, फिर यज्ञ करते हैं, फिर यज्ञ करने पर पूजा विधि संपूर्ण होने के बाद उस दारू को अभिषेक कर फिर वहीं से अभिषेक कर फिर उनको कटा पहले सोने का कोठाली में थोड़े का उसको चोट लगाएगा, फिर इसके बाद चांदी की कोठाली में, फिर अंत में लोहे की कोठाली में इसको पूरे वृक्ष को काटा जाता है, और जो मुख्य अंश जिसमें विग्रह बनने वाले उसको काट के फिर इस प्रकार उसी वृक्ष के दूसरे टहनिया में बने हुए चक्कर जो गाड़ी में इनको लोडिंग करके खींचते खींचते लेके आते हैं कहां तक, पुरी तक। अब दारू ब्रह्म को वस्त्र में लिपटा जाता है, उसको पब्लिक में सही देखने अलाउ नहीं, कहते कि जो ऐसे ही पूरे वृक्ष को ऐसे ही वस्त्र के बिना देखता है, नंगे विग्रह को ने वो देखता है कि लकड़ी को, तो उसकी अशुभ होता है, इसको देखने का मना है, इसलिए उसको वस्त्र में लिपटा कर उसको लेके आते हैं पुरी तक। आकर जगन्नाथ मंदिर के उत्तर गेट जो है, उत्तर गेट के अंदर से अंदर में लेते हैं, उत्तर का गेट जो है उत्तर गेट से ही अंदर लेकर कोयली वैकुंठ जहां पर जगन्नाथ जी के स्थान है, वहीं पर उनके विग्रह निर्माण होता है और जो पुराने विग्रहों को वहीं पर समाधि दिया जाता है, अंदर में उनका समाधि दिया जाता है। लेकिन ऐसे जगन्नाथ के विग्रह पूरा जमीन के अंदर माने पुराने विग्रह की जो समाधि दी अभी हो गया, और लड़ी जो पुराने विग्रह दे दिए अभी नया विग्रह आ गए। लेकिन कोई कई कहते कि इतनी जल्दी कैसे कच्चा विग्रह काट के लाए और इसमें विग्रह सब निर्माण हो गया, फिर ऐसे कैसे हो जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जो पहले नवकलवर में जो विग्रह मिला था, नहीं जो वृक्ष मिला था उसका विग्रह बन के रहते हैं अगले नवकलवर में, फिर इसको उसी में ट्रांसफर किया जाता है। अभी जो विग्रह में नवकलवर के वृक्ष मिला उसको फिर स्टक करके रखते हैं अगला नवकलवर के लिए, उसको ऐसे ही रखा जाता है, सुख सुख की फिर रहता है। तो इस प्रकार वो कोयली वैकुंठ में जो विग्रह को नीचे जमीन के अंदर समाधि दे दिया जाता है, फिर उसको खुदाई नहीं किया जाता, उसके अंदर वही रहते अगले नवकलवर तक उसी का। लेकिन एक बार ऐसा ही घटना हुआ था कि गौड़ीय वैष्णव थे जगदीश पंडित, कि चरित्र गौरांग चेतन चरित्र में भागवत में सुनोगे, तो उनकी गांव में जो जाओगे चकदह गांव में मैं गया था, वहां पर विशाल विग्रह है जैसे जगन्नाथ जी के विग्रह। यहाँ कहते गौरांग महाप्रभु ने जगदीश पंडित को भेजे थे बचपन में, उनके घर में एकादशी दिन में जाकर अन्न खाए थे, और उसके बाद उसको बताए थे जब अब महाप्रभु कहे कि तुम जाकर पुरी में रहो जगन्नाथ के पास में, तो आकर पुरी में जगन्नाथ जी महाप्रभु के आदेश पालन करके रहता था, प्रचार करता था। लेकिन महाप्रभु जब संन्यास लेकर आना चाहे तो उसको वापस बुलाए, अभी वापस आओ, अभी आके तुम बंगाल में प्रचार करो, मैं जा रहा हूँ कहाँ पुरी आ रहा हूँ। लेकिन उसको जगन्नाथ जी में दीर्घ समय रहने के कारण बड़ा आसक्त हो गया था, हर दिन जगन्नाथ जी के पास जाता था, नाश्ता था, गाता था, भजन गाता था, उसको वापस आने की इच्छा नहीं था, बहुत रो रहा, कहे कि जगन्नाथ जी क्या अपराध किया मुझे यहां से वापस भेज रहे आप भी मुझे माने वापस भेज रहे, और जो सोएंगे आपकी मूर्तिमंत अवतार गौरांग वो इधर आ जा रहे, चाहे मैं वहां जाकर उनके संग भी प्राप्त करता, उनके संग भी नहीं होगा, वो आपके पास आ रहे इधर और मेरे को आप भेज रहे वापस। खाना पीना छोड़ के रोने लगे, तभी जगन्नाथ जी ने गजपति राजा को हेडबुजर को कहे कि देखो ये महान भक्त है मेरे, मेरी बिच्छेद इसको बहुत सता रहा है, इसलिए आप मेरे पूर्वक नवकलवर के जो विग्रह जमीन के अंदर समाधि दिए गए इसको खुदाई करके वो विग्रह को निकाल के दे देना इनको, हाँ ये लेके जाएंगे कहाँ साथ में, इनको भी कहे मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। अरे बड़ा आश्चर्यचकित, ऐसा कभी आदेश किसको नहीं हुआ था, तो लेकिन आदेश हुआ था क्या करें, तो उनको फिर खुदाई करके उन जगन्नाथ जी के विग्रह को निकालकर जगदीश पंडित को कौन है उनको ढूंढ के गजपति राजा ने लाकर कही तुम्हारे लिए जगन्नाथ तुम्हारे साथ में इसी रूप में जाना चाहते, जो पूरे पुराने नवकलवर का विग्रह को दिया। जगदीश पंडित बड़ा आश्चर्य लेकिन देखिए इतना बड़ा विग्रह है 7 फुट इतनी विशाल विग्रह, मैं कैसे इसको लेके जाऊंगा बंगाल तक, है वो भी और समस्या आ गया, फिर रोने लगे फिर कैसे लेके जाऊंगा आपको। भगवान ने स्वप्न में कहे कि तुम चिंता मत करो, एक विशाल लकड़ी लाओ है और उसकी एक साइड में एक सिक्के के ऊपर बड़ा सिक्का बनाकर मुझे बैठाओ और उसको बांध दो, और उस लकड़ी को कांध में धारण करना, पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, पीछे जहां देखोगे पहले वहीं बैठ जाऊंगा और यही उठा नहीं सकते है। सखी को पड़ी कथा जैसे वो कहानी हमको सुना रहे थे, उधर गौड़ी मठ के अभी अंडर में उसे मंदिर सेवा होते हैं, तो इसलिए वो जगदीश पंडित ने इन विग्रह को लेकर वहां पर स्थापना किया, लेकर पुराने नवकलवर विग्रह वहां लेके मंदिर में रखा, अभी गौड़ी मठ के भक्त लोग सेवा करते हैं, तो विशाल विग्रह है जगन्नाथ जी के विग्रह, नहीं तो जगन्नाथ जी के विग्रह जो नवकलवर तो उसके अंदर सब पुराने विग्रह समाधि दिए जाते हैं, नए विग्रह में पहले तो जो नया जो उपयुक्त दिन आता तो फिर पुराना विग्रह नया विग्रह दोनों को सामने सामने करके चतुर्थी जैसे पिछले गया थी तो उस दिन नया विग्रह और पुराना विग्रह सामने सामने करके ही जो निर्णय हो जो व्यक्ति विशेष रूप में चेंज करेगा दारू ने ब्रह्म को वो तीनों विग्रह में 3 व्यक्ति जाते हैं, कहते कि ये लोग ज्यादा जीवित नहीं रहते ज्यादा दिन, जो ब्रह्म को ट्रांसफर करता है बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाता है, फिर वो पुराने विग्रह से ब्रह्म को लेकर उनको आंख भी बंधा रहता है, पैर में हाथ में से कपड़े लिपटा रहता और इनको ऐसे ही अंधार, उस समय कोई अमावस्या के दिन ही की जाती है, अमावस्या को रात को 12 बजे पूरे अर्धरात्रि में अमावस्या में पूरे लाइट स्विच ऑफ कर दिया जाता है, मेन स्विच पूरे अंधार हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर सब कुछ पूरे पूरी शहर लाइट ऑफ करके पूरे अंधार में ही इसको ले जाए, वहां पर कुछ लैंप को जलता हो क्या पता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को लेकर जो अंधार रात्रि माने अमावस्या की रात्रि में
ठीक अर्धरात्रि में उसको ब्रह्म को उसके केवल हेड पुजारी उसके हाथ जो पुजारी उसको हाथ पकड़ के वहां से पकड़ा के फिर लाके यहाँ रख देते, पुराना विग्रह से निकाल के फिर नया विग्रह में रखवा देते, वो बक्स थोड़ा होता है बक्स के अंदर रख के फिर बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार ये ट्रांसफर हो जाता है, ब्रह्म की ट्रांसफर किया जाता है। तो ये विधि को ही क्या कहते हैं, नवकलर विधि में डिटेल नहीं कर और पुराना विग्रह को जो समाधि दी जाता है नया विग्रह में पर ब्रह्म को स्थापना करके ही फिर मंदिर में इनके नया सेवा पूजा के प्रारंभ किया जाता है। इस विधि को ये जो इसी को कहते हैं नव कलेवर। लेकिन ये श्लोक जैसे कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों करते, उसके प्रश्न कोई नहीं पूछ सकता, प्रश्न पूछने का अधिकार हमारे पास नहीं है, भगवान स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने लीला के लिए भक्तों को आकर्षित करने के लिए है वो अपनी लीला कैसे भी कर सकते हैं, हम इसके प्रश्न नहीं कर सकते। आज के श्लोक भागवत के वही कहते हैं, इनको जिज्ञासा में प्रश्न करने का अधिकार किसी का नहीं है, सो आठ है, स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं है? तो इसलिए इस संक्षेप में आपको नवकलेवर के बारे में कहा कि जो विस्तार कहें तो वो कई घंटे जाएगा, तो इसलिए संक्षेप में जैसे कुछ लोगों को सुनना था नवकलेवर क्या है संक्षेप में कहा। ठीक है, हरे कृष्ण। क्योंकि मुझे आज पुना जाना है तो मेरे को क्लास भी ठीक से टाइम से भी समाप्त करना है। ओके, कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न कोई पूछ सकते, कोई प्रश्न है, प्रश्न तो पूछ सकते हैं ना, दूसरा प्रश्न ये प्रश्न नहीं कि क्यों ऐसा होता है, वो भगवान स्वतंत्र है, सुन सुराट है
महाराज जी। वो जो जगन्नाथ जी को विग्रह जो जलाए वो भक्त लोग वो मुसलमान जो चले गए थे उनको बाद में कोई सजा वजा दिए नहीं, कैसे छोड़ दिए
उनको सजा क्या था, वो फिर कोढ़ व्याधि ग्रस्त होकर उनके एक्शन तो होगा लेकिन फिर भी वो भी महान भक्त था, प्रारंभ से जगन्नाथ जी के महान भक्त था, तो उसके ऊपर इतने अत्याचार किया गया इसलिए भगवान ने शास्ति देने के लिए इनको ये ब्राह्मण को सिखाने के लिए है, अरे मेरे भक्त को ऐसे अत्याचार करोगे तो मैं भी तुमको छोड़ के जा सकता हूं, इसलिए भगवान जगन्नाथ जी ने उनको भी वार्निंग दिया है, उनको चेतावनी देने के लिए भक्त, लेकिन फिर भी वो छोड़ते नहीं है, अभी भी अपने जी आदत है छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जगन्नाथ जी फिर भी उनके भक्तों की बड़े प्रिय, वो पुजारी लोग भी बड़े प्रिय होते जगन्नाथ जी को, पुंडरीक विद्वान जी को थप्पड़ खाना पड़ा किसके लिए, ब्राह्मण को क्रिटिसाइज किए थे थोड़ा जगन्नाथ जी के सेवकों को, कहते कैसा है ओढ़ षष्ठी के दिन मड़ुआ वस्त्र लाकर डायरेक्ट पहना देते बाजार से खरीद के, वस्त्र को धोकर फिर इसको पवित्र करके फिर जगन्नाथ जी को पहनना चाहिए, उसको कुछ चर्चा किए थे, अरे पंडे लोग क्या है पान चिबाते हैं कुछ भी करते हैं मंदिर के अंदर कुछ भी है, वो भी मुड़वा वस्त्र पहनते हैं, और जो तो समालोचना करके आए थे लेकिन रात को जगन्नाथ बलराम आए लगाए उनको है दोनों का फूल गया दोनों गाल है सूज गए, जगन्नाथ जी को उनके सेवक भी बड़े प्रिय होते हैं, वो लोगों ने कई जन्म की सुकृति से जगन्नाथ जी की सेवा पूजा प्राप्त किए हैं, वो भी साधारण नहीं है, यानी कभी कभी वो जब अत्याचार बदमाशी करते तो फिर उनको शास्ति देते हैं कौन जगन्नाथ जी, उसका वो कला पहाड़ को अत्याचार किए ब्राह्मण लोगों ने बहुत मारा है इनको पत्थर मारे, अब उड़ीसा में इसका ड्रामा करते हैं लोग हैं, तो उसको फेंक के बहुत कुछ अत्याचार किए तो जगन्नाथ जी छोड़ के चले गए सिंहासन, जगन्नाथ जी उठ के नहीं जाएंगे उनको कौन उठा के ले जाएगा, चले गए उठ के सतर्क कराने के लिए कि देखो तुम जो ऐसे करोगे मैं तुमको छोड़ के भी जा सकता हूं। ठीक है, ओके, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, नवकलेवर की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।